Market Monster. Market Monster. Market Monster. Market Monster. Market Monster. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
नमस्कार मार्केट मंत्र की ताजांक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक प्रकाश चावला। प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
वार्म वेलकम प्रकाश।
थैंक यू।
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख।
Fitch ratings increase India's growth forecast for the current fiscal year to 7.2%. Despite challenging heatwave conditions, the government achieves highest ever peak power demand successfully. And India's equity benchmark indices closes at record high today. Sensex raises 308 points, Nifty gains 0.39%.
वैश्विक साख निर्धारण एजेंसी फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत में वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 7.2% किया। देश में गर्मी की चुनौतीपूर्ण स्थिति होने के बाद भी सरकार ने बढ़ी हुई उच्चतम बिजली की मांग पूरी की और घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज। नए उच्चतम स्तर पर पहुंचकर बंद हुए प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स 308 अंक उछला, निफ्टी 0.39% ऊपर आया।
Fitch ratings increased India's growth forecast for the current fiscal year to 7.2%, up from 7% projected in March. Fitch ratings quarterly global economic outlook report published today also depicted raised world growth forecast for 2024 to 2.6% from 2.4%. Confidence in European recovery prospects has improved and China's export sector is experiencing a revival. Domestic demand in emerging markets, excluding China, shows stronger momentum. These factors highlight a positive outlook for global economic growth in the coming year. Prakash, we see this as a very encouraging ratings that has come from Fitch. The revision is primarily due to recovery in consumer spending and increased investment. What is your take on that?
Actually, this will be fourth year in a row, the FY25. We are all expecting plus 7% growth. Even RBI also is expecting plus 7% growth. So if we are able to achieve plus 7% growth in FY25 as well, it would be fourth year in a row that we would be doing plus 7%, which is remarkable. Mm. Why remarkable? Because it shows the sustainability. You know, achieving a particular growth point is one area. Sustaining it is another. So which means sustainability of India's growth, or rather growth story, is something remarkable. And Fitch rating revision has to be seen in that context. So, as you said, whether it's investment or consumption, well, it's both. They are related because investment follows consumption.
So, what could impede this growth going forward? What is the role of inflation in all this?
Well, inflation could be an elephant in the room. But now RBI and the fiscal policy people who are in charge of it in the finance ministry and the other ministry and the government and even the states are quite equipped enough to take care of the supply side management. Mm-hmm. Whereas the RBI is is trying to be on top of the situation when it comes to the monetary policy, but it has to be matched with the supply side management. So you said what could be the challenges. The behavior of monsoon could be one of the challenges.
Okay.
It remains to be seen how to what extent monsoon kind of is being showers his blessing, God Indra, to what extent showers his blessings on us. So that's one area. The other area which has to be watched is the geopolitical situation that also affects the global supply chain,
and
especially the merchant.
Happen any time.
We have seen through it for the last 2 years, a few years now, and somehow the global trade also has, in a way, learned to live with it.
So you mentioned about the monsoons, but the IMD has given a very positive outlook as to what is going to happen when it comes to monsoons. They've been saying that it's going to be normal.
Well, the IMC in its first forecast did say that the monsoon is going to be above normal, or which was a good news. But as it has started playing out, see, in the month of June, first half of month of June has seen deficit in large part of India. So that's an area of concern. But the experts are now forecasting that July is going to be better. So let's hope.
प्रकाश जी, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर, न केवल भारत में बल्कि फिच ने अपनी रेटिंग में दुनिया की आर्थिक गतिविधियां वहीं बढ़ने के आसार जताए हैं, वहां भी संशोधन किया है कि वहां वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक रहेगी। साथ ही यूरोप से भी खबरें आई हैं कि वहां से भी वृद्धि दर का पूर्वानुमान में सुधार किया है। कुल मिलाकर क्या लग रहा है कि दुनिया में जो एक मंदी के आसार दिख रहे थे उससे अब हम उबर चुके हैं और आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ती ही जाएगी? अब
जैसे कि आपने फिच का जिक्र किया
जी,
अब जो दुनिया की चिंता है ग्लोबल इकोनॉमी की, वो इतनी मंदी की नहीं है। अब चिंता इन्फ्लेशन की है
जी।
अब वो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए सारे सेंट्रल बैंक जूझ रहे हैं, तो मंदी वाली चिंता अब नहीं है। चाहे वो अमेरिका देखें या मंदी, अब जैसे ग्लोबल ट्रेड का भी जो प्रोस्पेक्ट इम्प्रूव होने की संभावना है, विच इज गुड इवन फॉर इंडिया,
बिकॉज
हमारा ट्रेड बढ़ेगा, तो उस सूरत में प्रॉब्लम मंदी की नहीं है। प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन जो उम्मीद की जा रही थी, अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद होती है और वो उम्मीद जब तक रियलाइज नहीं हो पाएगी जब तक आप इन्फ्लेशन को ठीक से टैकल नहीं, वो उनसे ये चैलेंज है, वो हर पूरे संसार के वैश्विक इकोनॉमी में हर जगह ये चैलेंज है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में पूरा जो प्ले आउट हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी का, उस तरह से हुआ।
इसे हम यानी भारत के लिए क्या समझें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात के अवसर बढ़ेंगे यदि दुनिया की आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं? तो
जाहिर बात है, क्योंकि हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है, तो जाहिर बात है हम उस पर काफी हमारी नजर होनी चाहिए, और किस तरह से कौन सी मार्केट्स में अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, कहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री भी देखती है, हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो हैं वो भी इस चीज पे नजर रखते हैं, उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल ये अच्छी खबर है कि अगर ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव होते हैं, बढ़ते हैं, उसकी सुधार आता है, तो ये अच्छी खबर
जी।
सो इन ऑल दिस लेट्स टॉक अबाउट चाइना। द फिच रिपोर्ट सेज दैट देयर एक्सपोर्ट सेक्टर इज एक्सपीरियंसिंग अ रिवाइवल। However, at the same time, they are saying that domestic demand in emerging markets, excluding China, is showing momentum. So, given these two scenarios, what do you think the role China will be playing in the world economic scenario?
Well, China, as you know, has been the factory of the world. They have been the major suppliers. So if global trade prospects improve, naturally China also will gain. So whereas its external part of the story is concerned, so whereas the demand in the emerging economies is concerned, demand also is a function of improvement in the trade, in the industry, in the overall financial markets. I see, when you see that the trade prospects do get are improving, which means there is some element of demand improvement as well.
When they're talking about export sector doing well, that means the world has a demand for their products, because that's why they're exporting their products. That means their manufacturing is also doing pretty well. So how does that augur for India, particularly made in India story that we're talking about?
Well, as I said earlier, improvement in global trade is always a good news for us, because we do about 400 billion plus, around 400 billion merchandise exports, merchandise alone. So when you say trade, in the merchandise trade, if the improvement is there, and mind you, merchandise trade has a lot of bearing for our job prospects, because our exports are highly job oriented sectors, be it textile, be it agriculture, be it your gems and jewelry, engineering. There are a lot of MSMEs in engineering which are doing a good part of exports. And then you have the services exports also. After all, the ecosystem improves, so the services import exports would also improve. So as a combined kind of a positive, it's something we need to be really satisfied and happy about it.
Yani kul milakar Fitch ki jo report hai wo sambhavnaen kai jagah rahi hain pure vishw ke liye bhi aur apne desh ke liye bhi ki kai morchon par hum aage badh sakte hain. Aaiye khabron ka silsila aage badhate hain. देश में गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय समुचित कदम उठा रहा है. मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में यह सूचना देते हुए कहा गया है कि देश के उत्तरी क्षेत्र में कल अब तक की सबसे अधिक 89 गीगावाट बिजली मांग की आपूर्ति की गई. इसमें कहा गया कि पड़ोसी क्षेत्रों से 25-30% बिजली मंगाकर यह आपूर्ति संभव हुई है. ऊर्जा मंत्रालय ने संबद्ध विभागों से कहा है कि स्थिति को देखते हुए उच्च सतर्कता बरती जाए और बिजली की उपलब्धता यथासंभव अधिक से अधिक सुनिश्चित की जाए. प्रकाश जी, इसे हम एक अच्छी उपलब्धि माने, देश के स्तर पर बिजली की कभी हम किल्लत देखा करते थे और 89 गीगावाट यानी जो मांग आई वो पूरी की पूरी हमने आपूर्ति कर दी. इसे एक उल्लेखनीय हम पड़ाव माने बिजली उत्पादन की दृष्टि में और उसके वितरण की दृष्टि में.
बिल्कुल, बिकॉज ऐसा है कि आपको मालूम है किस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है पूरे नॉर्थ इंडिया में
जी,
और फिर उस सूरत में बिजली का होना बड़ा जरूरी है, चाहे वो कंज्यूमर के लिए हो, घर हाउस होल्ड में बिजली हो या फैक्ट्रियों के लिए
जी.
पूरा आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम, पूरा आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़ी आ रहे हैं, उनका कंजम्पशन है, तो पूरा इतनी बिजली की डिमांड और डिमांड बढ़ना जाहिर थी क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही. और उस चैलेंज को मीट कर पाना अपने आप में बड़ा एक संतुष्टि वाली बात है और अच्छी चीज मानी जाती है. और हम उम्मीद करते हैं कि अभी गर्मी गई तो नहीं है, तो गर्मी हम तो उसके बिल्कुल
मध्य में है,
मध्य में
ठीक ऑफ इट,
ठीक ऑफ इट. तो उस सूरत में अभी हमको और सतर्क रहना पड़ेगा. हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से सप्लाई बनी रहे ताकि हम लोग इस जो गर्मी को सहन कर लेंगे उसको टैकल कर पाएंगे.
अच्छा, यहां पर यानी खबरों से थोड़ा सा परे हटके, ये जो गर्मी है इसे हम जो पर्यावरण बदलाव हो रहा है या पर्यावरण संकट की जिसकी हम चर्चा किया कर रहे हैं, कहीं उसका ये प्रभाव है या सामान्य से अधिक गर्मी पड़ रही है, बात बस इतनी सी है?
नहीं, इतनी सी बात नहीं है. वाकई बड़ा चिंता का विषय है. और क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज जो जीवन को तो करता है इम्पैक्ट
जी,
ये हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को करता है
जी.
अभी आरबीआई के लिए मेन हुआ है कि ग्रीन फाइनेंसिंग में करना चाहिए और क्लाइमेट चेंज से जो ताल्लुक रखते हैं रिस्क, बिजनेस रिस्क होते हैं, उसको भी हम कैसे फैक्टर इन करें अपनी फाइनेंशियल मार्केट के लिए. लैंडिंग करनी है, मान लीजिए आपने किसी बिजनेस को, आपने लैंडिंग करी, बैंकों ने लैंडिंग करी, और वो बिजनेस इम्पैक्ट हो गया क्लाइमेट चेंज, एडवर्स क्लाइमेट चेंज से, वो फैक्टर जो रिस्क फैक्टर्स हैं, बैंक्स कर पाए नहीं कर पाए, वो डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे सामने। तो क्लाइमेट चेंज अब जो है एकेडमिक बात नहीं रही, वो तो हमें रोज थपाड़े मार रहा है।
हाँ, यानी दीवार पे लिखी इबारत है जिसे हमें पढ़ना ही चाहिए,
पढ़ना नहीं, अब तो उसको हम देखना चाहिए, टैकल करना चाहिए।
प्रकाश, व्हाट आर द अदर मेजर्स दैट द मिनिस्ट्री इज प्लानिंग टू टेक टू इंश्योर एडिक्वेट पावर सप्लाई टू फुलफिल द इंक्रीज पावर डिमांड इन द समर सीजन?
वेल, एज यू नो दैट वी आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द थर्मल, because our major part of our demand is met by thermal projects for which we need coal. So I think the central ministry is taking steps to ensure that the coal supply is maintained at the thermal power stations. The role of states is quite important, and they must make sure that adequate elbow room is there, adequate stocks are kept. And then in case there is a need, because what has happened is there is a lot of cooperation in our neighboring countries so far as the power is concerned. Quite infrastructure also has been built. So I think a combination of steps, measures are being taken, and I am hopeful that we'll continue to be on top of the situation.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार में आज दिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक नई ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 308 अंक यानी 0.4% बढ़कर 77,301 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 92 अंक यानी 0.39% बढ़त के साथ 23,558 दर्ज हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो वहां भी दिवाली तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.43% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.96% की वृद्धि हुई।
इंडियाज इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स क्लोज्ड एट रिकॉर्ड हाई टुडे। द सेंसेक्स रोज 308 पॉइंट्स और 0.40% टू क्लोज एट 77,301। Nifty gained 92 points or 0.39% to settle at 23,558. In the broader market of the BSE, the mid-cap index was up by 0.43%, while the small-cap index rose 0.96%. 22 out of 30 companies registered gains in the Sensex index. The top three gainers today were Power Grid 3.17%, Wipro 3.04%, and Titan 1.74%. Conversely, the three major laggards were Maruti 2.14%, Tata Steel 1.04%, and Ultra Cement 0.96%. In sectoral indices at the BSE, 15 out of 10 sectors logged gains. The top three gainers were Realty 2.11%, Consumer Durables 1.27%, and Utilities 1.05%. Whereas Healthcare 0.46%, Metal 0.21%, and Oil and Gas 0.08% were the three major laggards. The overall market breadth was positive. Out of 4,150 companies, the share of 2,167 companies advanced, 1,836 declined, and 147 remained unchanged.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज एक डॉलर की तुलना में रुपया 83.41 रूपये पर बंद हुआ। उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.21% बढ़कर 105.49 पर कारोबार कर रहा था।
प्रकाश, हाउ डू यू डू यू एक्सपेक्ट मार्केट अप ट्रेंड टू कंटिन्यू इन कमिंग डेज सपोर्टेड बाय विच वी हैव ब्रीफली टच्ड अपॉन एज वेल पॉजिटिव मैक्रो ट्रेंड्स एक्सपेक्टेशन ऑफ सस्टेन्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड ऑल्सो whether it is going to be normal or above normal monsoon, but the positivity related to it is there, and also the strong earnings.
Well, there would be ups and downs as the nature of the market is. There would be ups and downs, and market would be in a range bound, range kind of a situation. But so far as the overall macro is concerned and the India growth story is concerned, because the markets are closely linked with the India growth story, that remains intact. So the medium to long term, we are quite there. We would be there. When it comes to daily ups and downs, that's the nature of the market. And so because we are already at record level, mind you, so there would be some profit taking, profit booking. And naturally, when people would like to take some money home, so that's a daily kind of up and down, which is expected.
So which sectors are you gung-ho about?
Well, I won't be gung-ho about any sectors, but there are some sectors, as you rightly said, that which are being attended to rather more intensely by the government, by the fisc, which are the manufacturing, the defense production, the infrastructure, the ports, the airports,
so
public
infrastructure.
Then you have manufacturing, then you have technology. These are the sectors which are going, now the big event budget is around us, the regular budget I mean to say, for the FY25. So the priorities we are expecting that these the government spend will continue to have momentum. So in that context, the India growth story remains intact. So, but daily ups and downs is a part of market.
Okay. What about the mid-cap and small-cap index? They were up today 0.43 and 0.96% respectively. What's your take on their prospects in the coming days?
Well, mid and small-cap, actually in a typical volatile kind of a market, which we had seen last month, the mid-cap and the small-cap companies or the shares become risky to handle. But what is happening now, because today markets are more or less in a stable kind of a situation, having done the record high, there is not much volatility left, as is generally seen from the gauge called India VIX. The India VIX, mind you, has scaled up so much,
particularly last
but today time. it is much below the 15 threshold, which is stable. So when the market is in stable kind of situation, the mid cap and the small caps become less risky. So to that extent, I am not surprised that the mid cap and small cap index also is improving.
यहाँ पर प्रकाश जी हम समझना चाहेंगे जो बाजार का उच्चतम स्तर है उसमें जो हमारे छोटे कहले के निवेशक हैं आम श्रोता हैं हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और हमारे विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर अपना आगे का कार्यक्रम निर्धारित करते हैं उन्हें बाजार के इस स्तर पर क्या सलाह देना चाहेंगे आप अपने निवेश को लेकर
देखिए मार्केट का जो इंडेक्स होता है वो हेडलाइन बनाता है तो इंडेक्स प्रभावित करता है स्मॉल कैप्स को मिड कैप्स को या छोटे इन्वेस्टर्स को एक्साइटमेंट भी लाता है लेकिन हमारी हमेशा से एडवाइस रहती है इन्वेस्टर्स को कि आप कंपनियों को जो है जो कंपनीज हैं जिनके शेयर्स आप खरीद रहे हो उन पे उनको देखिए क्या खरीद रहे हो आप कौन उसको जिस बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं वो कैसा बिजनेस है चाहे वो रिस्की है उसका प्रमोटर कौन है वो उसका मार्केट में रेट क्या है ऐसा चीज होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या वो इतना महंगा हो चुका है कि आप खरीदेंगे तो थोड़ा रिस्क है थोड़ा वेट कर लीजिए तो अगर आपको पास नॉलेज है तो अच्छी बात है नॉलेज नहीं है फिर भी मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के पास चाहिए
जी
सो प्रकाश Fitch also said that the revision that's taking place in the India growth story is primarily due to recovery in the consumer spending. In light of that, how do you see FMCG products, FMCG sector behaving in the coming days?
Actually, what has happened is that this consumption story, as I said in the beginning, that because we have been growing, our economy has been growing plus 7% for the last, this will be fourth year in a row. And largely, first 3 years or 2.5 years, we have grown because of consumption. The consumption remained intact. So consumption is very much there. Your specific question on FMCG. FMCGs in the coming days would depend on the play out of monsoon. because the rural demand is critical for FMCG.
Right.
So rural demand has a direct relationship with the monsoon.
यानी इंद्र महाराज की शरण में हमें जाना ही पड़ेगा, यही कुल मिलाकर सार निकल रहा है। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार जहां कुल मिलाकर आज तेजी दिखी है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक आज 1% लाभ में रहा। चीन की शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.48% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.72% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.12% लाभ के साथ बंद हुए। उधर बिकवारी के दबाव में हांगकांग का हेंगसेंग 0.11% नुकसान में रहा। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां भी सभी प्रमुख बाजारों में समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली चल रही थी। फ्रांस का कैक 40 0.18% ऊपर था। जर्मनी के डेक्स में 0.2% की वृद्धि थी, जबकि लंदन का फुटसी 100 0.4% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था।
The S&P 500 and Nasdaq scored record closing highs yesterday as technology shares rallied on enthusiasm over artificial intelligence ahead of this week's economic data and Federal Reserve's officials' speeches that could shed light on the monetary policy. The Dow Jones Industrial Average appreciated 0.49%, the S&P 500 gained 0.77% and the Nasdaq Composite was also up by 0.95%. Prakash, monetary policy, the main question on everyone's mind is will they or will they not? What is your view? Will they cut the rate or not cut the rate?
Well, it all depends on inflation, as I said earlier. So inflation...
But the indications are coming that perhaps this time around a rate cut could be on the anvil.
Well, it has been on the anvil for quite some time, but that particular threshold, the time is, it keeps getting delayed. So yes, there is an expectation that the rate cut would start now. The cycle would reverse, so to speak. Rather, because generally rate interest rates have been firming up. So there has been expectation. Let's wait and see, because there is no clarity. There is an expectation, yes, that the cycle, it has reached the peak, now it has to reverse. So when the reversal starts remains to be seen, but the equity market investors are hoping that this will be sooner than later.
Okay. Moving on, the oil prices were largely stable on Tuesday as traders awaited signs of a hoped-for summer demand boost to prop up prices, even as strong supply threatens to blunt gains. Brent crude was down by 0.36% to $83.95 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate crude also decreased 0.40% to $80.01 per barrel when reported.
आइए चलें सर्राफा बाजार। पहले घरेलू सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखी गई है। समाचार तैयार किए जाते समय अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.21% नरमी के साथ 71,450 रूपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.47% घटकर 88,820 रूपये प्रति किलो पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर चलें तो वहां भी सोने के मूल्य में थोड़ी सी नरमी देखी जा रही थी। कॉमेक्स में सोने का मूल्य 0.15% घटकर $2,325.50 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 0.43% घटकर $29.26 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से प्रकाश जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
शुक्रिया।
थैंक यू प्रकाश फॉर बीइंग विद अस।
थैंक यू।
एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन। Fitch Ratings increase India's growth forecast for the current fiscal year to 7.2%. Despite challenging heatwave conditions, the government achieves highest ever peak power demand successfully. And India's equity benchmark indices closes at record high today. Sensex rises 308 points, Nifty gains 0.39%.
Fitch Ratings ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत में वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 7.2% किया। देश में गर्मी की चुनौतीपूर्ण स्थिति के बाद बाद भी सरकार ने बढ़ी हुई उच्चतम बिजली की मांग पूरी की और घरेलू शेयर बाजार में दिवाली से प्रमुख सूचकांक उच्चतम स्तर पर पहुंचकर हुए बंद। सेंसेक्स 308 अंक और निफ्टी 0.39% ऊपर आए।
दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंथ्स। टिल टुमारो, गुड बाय। Market Sattar.